ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का वार्षिक बजट कल किया जाएगा संघीय संसद में पेश। देश की चालू आर्थिक वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर 2.16% होने का सरकार का अनुमान। विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का असर नेपाल पर भी पड़ा है, अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत का कथन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के नेता रेशम चौधरी को आम माफी देने की राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का सरकार ने किया निर्णय। विश्वविद्यालय को आविष्कार और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में हिमस्खलन में कम से कम हुई 11 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का बजट कल संघीय संसद में पेश किया जाएगा। कल 4:15 बजे संघीय संसद की संयुक्त बैठक में आर्थिक वर्ष 2080-81 के राजस्व और व्यय का वार्षिक अनुमानित बजट पेश किया जाएगा। संघीय संसद के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सभा की आज हुई अलग अलग बैठक में अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत ने आर्थिक वर्ष 2070-80 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करते हुए अर्थमंत्री डॉ महत ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का असर नेपाल पर भी पड़ा है और देश की आर्थिक वृद्धि दर 2.16 रहने का अनुमान किया गया है। उन्होंने कहा कि वस्तु के आयात में कमी और कुल मांग में कमी से आर्थिक गतिविधियां धीमी हुई हैं और संसाधन प्रबंधन पर भी दबाव बना हुआ है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक और संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2080 को संघीय संसद की संयुक्त बैठक ने बहुमत से पारित किया है। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में आज हुई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ने संघीय संसद की संयुक्त बैठक और संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2080 को बहुमत से पारित किया। राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है। राष्ट्रीय सभा की बैठक के विशेष समय में सांसदों ने प्राथमिकताओं के आधार पर कानून निर्माण करने के हिसाब से संसद में विधेयक लाए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। बैठक में सांसदों ने भ्रष्टाचार के दोषियों के ऊपर जांच और दंडित करने, भ्रष्टाचार नियंत्रण में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़ा होने, प्रतिस्पर्धा से निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्ति को अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पदाधिकारी पद पर नियुक्त करने लगाए बातों पर जोर दिया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल 15 जेठ शाम 6:16 पर बुलाई गई है। सरकार ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के नेता रेशम चौधरी को आम माफी देने के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेता चौधरी लगायत कैदियों को आम माफी देने के विषय में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेता चौधरी की बाकी सजा माफ करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गई है। विक्रम संवत 2072 भाद्र 7 कैलाली के टीकापुर में थरुहट थारुवान आंदोलन के दौरान नेपाल पुलिस के SSP लक्ष्मण न्योपाने सहित 7 सुरक्षाकर्मियों और एक नाबालक की मौत हुई थी। इस घटना के अभियुक्त चौधरी को जेल भेज दिया गया था। चौधरी को जिला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल और सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी तरह संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के भारत दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और सोमवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा कि विश्वविद्यालयको आविष्कार और अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने की जरूरत है। आज नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन के प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन का काठमाडौँ में उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसन्धान में आधारित मौलिक उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने हिमालय क्षेत्र में देखी जाने वाली दूरसंचार नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। आज सगरमाथा आरोहण के 70वें वार्षिक समारोह में हुलाक सेवा विभाग फिला टेलीकॉम टेलिक तथा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारक आवरण को रेखांकित करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री शर्मा ने ये बात कही। दामोर जलाशय जल विद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी के लिए चीनी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड को पत्राचार करने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में आज आयोजित निवेश बोर्ड की बैठक से 756 मेगावाट क्षमता वाली दामोर परियोजना के विस्तृत संभाव्यता अध्ययन की प्रगति और समग्र स्थिति के संबंध में पीसीसीएल को पत्राचार करने का निर्णय किया गया। करनाली कॉरिडोर के तहत खुलालू पुल की मरम्मत के लिए 14 दिनों से बंद कॉरिडोर को खोल दिया गया है। कालीकोट में खुलालू पुल के आसपास की सड़क की मरम्मत की आवश्यकता के कारण करनाली कॉरिडोर बैसाख 30 गति से बंद कर दिया गया था। कालीकोट के मुख्य जिलाधिकारी जोरा सिंह माझी ने बताया कि सड़क डिवीजन कार्यालय जुमला की पहल पर पुल के आसपास की सड़क की मरम्मत के बाद कालीकोट के खुलालू से होमला के सली सल्ला तक सड़क का खंड पूरी तरह चालू हो गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में हिमस्खलन के कारण करीब 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि 13 अन्य घायल हो गए हैं। हालांकि अब तक कुल 8 शव निकाले जा चुके हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से ये जानकारी दी है। डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घटना के समय गुजर परिवार के 25 लोग अपने मवेशियों के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से अस्तोर जा रहे थे। इसी दौरान सभी हिमस्खलन के चपेट में आ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकी बचे शवों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं घायलों को बचाने के जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। न्यू मैक्सिको के रेड रिवर क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली में गोलीबारी हुई जिसमें 3 लोग मारे गए और कई घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का वार्षिक बजट कल किया जाएगा संघीय संसद में पेश। देश की चालू आर्थिक वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर 2.16% होने का सरकार का अनुमान। विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का असर नेपाल पर भी पड़ा है। अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत का कथन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के नेता रेशम चौधरी को आम माफी देने की राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का सरकार का निर्णय। विश्वविद्यालय को आविष्कार और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में हिमस्खलन में हुई कम से कम 11 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।